हूँ विभूति शर्मा और आप सुन रहे हैं संयुक्त राष्ट्र समाचार। 17 नवंबर 2018 के इस बुलेटिन में शामिल है, 40 करोड़ लोग जी रहे हैं डायबिटीज के साथ, जीवन शैली में बदलाव से बचा जा सकता है इस क्रॉनिक बीमारी से, खत्म हो रहा है एंटीबायोटिक दवाइयों का असर, कैसे बचा जाए सुपर बग से, सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में फिर से लड़ाई भड़कने पर गंभीर चिंता, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी में कानूनों को भी अपडेट करने की जरूरत, और रोहिंग्या लोगों की म्यांमार वापसी सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक बनाने पर जोर। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। बुधवार 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम थी, क्रॉनिक बीमारी डायबिटिक परिवारों को किस तरह प्रभावित करती है और परिवार के सदस्य डायबिटीज होने से रोकने में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। इसमें डायबिटीज के लक्षणों का बिल्कुल शुरुआती अवस्था में पता लगाना और बीमारी का सामना करने के तरीके भी शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोग डायबिटीज के साथ जीने को मजबूर हैं। अगर हम सभी ने अपनी खानपान की आदतों और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव नहीं किए तो ये संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ सकती है। ध्यान दिला दें कि डायबिटीज की वजह से कम उम्र में भी मौत होने का खतरा होता है। साथ ही डायबिटीज से अंधेपन, किडनी के नाकाम होने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते हैं और शरीर के अंग काटने तक की नौबत आ सकती है। जाहिर सी बात है कि डायबिटीज का इलाज कराने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ परिवारों पर भी भारी बोझ पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनहोम गेब्रियसस का कहना है कि डायबिटीज के बोझ से खुद मरीज और उसके परिवार के लिए आर्थिक मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। उनका ये भी कहना था कि डायबिटीज के आर्थिक बोझ से मरीजों और उनके परिवारों को बचाने और उन्हें समय पर ठोस मदद मुहैया कराने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डायबिटीज से बचने का सबसे कारगर तरीका यही है कि खाने पीने में सावधानी बरती जाए, शारीरिक सक्रियता के साथ साथ नियमित रूप से कसरत और व्यायाम किया जाए। इसके अलावा नियमित रूप से स्वास्थ्य का चेकअप भी कराते रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होने के परिणाम स्वरूप ऐसे हालात बन सकते हैं कि वर्ष 2050 तक एशियाई देशों में हर साल 50 लाख लोगों की मौत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की जिन एजेंसियों ने ये ताज़ा अध्ययन किए हैं उनमें खाद्य और कृषि संगठन FAO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP भी शामिल है। इन एजेंसियों ने 12 नवंबर को शुरू हुए वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स अवेयरनेस वीक यानी विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह शुरू होने के मौके पर ये चेतावनी जारी की। इन संगठनों ने इंसानों, पशु पक्षियों और खेती बाड़ी में एंटीबायोटिक दवाइयों का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ करने का आह्वान किया है। जब बीमारियों के बैक्टीरिया और वायरस एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी क्षमता हासिल कर लेते हैं तो इस स्थिति को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR कहा जाता है, जिसमें एंटीबायोटिक दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। ताज़ा शोध आंकड़ों में पाया गया है कि बहुत सी एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म हो रहा है और बहुत से संक्रमणों पर ये दवाएँ काम नहीं कर रही हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR की वजह से होने वाली मौतों की संख्या कैंसर से होने वाली मौतों से भी ज़्यादा हो सकती है। इन हालात की आशंका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यानी वैश्विक स्वास्थ्य आपदा करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसियों ने सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में ताज़ा युद्ध गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये लड़ाई उस क्षेत्र में भी बताई जा रही है जो ऐसे कुछ इलाकों के पास है जहां से सैनिकों को हटाया जाना है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बताया कि लड़ाई की ताज़ा घटनाओं की वजह से कुछ लोगों के हताहत होने और बहुत से लोगों के विस्थापित होने की भी खबरें हैं। फरहान हक ने आगाह करते हुए कहा कि विद्रोहियों के कब्जे वाली आखिरी इलाके इदलिब में अगर लड़ाई और तेज होती है तो 30 लाख महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। फरहान हक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का आग्रह है कि हर कीमत पर लड़ाई को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर लड़ाई बंद नहीं हुई तो इससे मानवीय तकलीफों का एक नया और बहुत भीषण दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आम लोगों की हिफाजत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियों की तरफ भी ध्यान दिलाया। ये तो हम सभी जानते हैं बल्कि देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से बदलाव हुए हैं। इन बदलावों के मद्देनज़र ये मांग भी उठी है कि कानूनों को भी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत तेजी से हो रहे बदलावों के अनुरूप प्रासंगिक बनाने की ज़रूरत है, ताकि डिजिटल मंच पर भी सभी को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने पेरिस में 3 दिन का एक सम्मेलन किया जिसका नाम था इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। दुनिया भर से करीब 3,000 प्रतिनिधियों ने इस फोरम में शिरकत की। इनमें पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल, प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भी शामिल थे। इस फोरम में चर्चा के मुख्य मुद्दे थे झूठी सूचना का प्रसार, लोगों की निजता यानी प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा व अन्य कानूनी और नैतिक मुद्दे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस सम्मेलन में शिरकत की और फोरम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने अपनी बात इन शब्दों में रखी।
New technologies are transforming every aspect of our lives.
नई टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल कर रख दिया है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो रही तीव्र प्रगति की वजह से हमारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं या फिर जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं उनकी अभी पर्याप्त समझ नहीं हुई है। टेक्नोलॉजी इंसानों को मजबूत या सशक्त बनाए, ना कि वो हम पर नियंत्रण करने लगे। अतीत के उदाहरणों से सबक लेते हुए हमें टेक्नोलॉजी के बदलावों के मद्देनज़र भी ऐसी नीतियाँ बनानी होंगी जिनके जरिए खराब नीतियों से बचा जा सके। इंटरनेट गवर्नेंस मुद्दे पर चर्चा सिर्फ चर्चा भर ही बनकर ना रह जाए। इस क्षेत्र में कारगर नतीजे हासिल करने के लिए ठोस नीतियां बनाकर उन पर भी अमल करना बहुत ज़रूरी है। हम इस डिजिटल युग में अपना भाग्य बाजार की ताकतों के अदृश्य हाथों में नहीं छोड़ सकते। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शब्द। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने कहा है कि बांग्लादेश में शरण लिए हुए रोहिंग्या लोगों को म्यांमार वापस भेजने के लिए अभी अनुकूल माहौल और पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, इसलिए उन्हें उनकी मर्जी के बिना वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। ऐसी खबरें हैं कि म्यांमार सरकार ने लगभग 4,350 रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश से वापस बुलाने के इंतजाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विस्थापित लोगों की अपने मूल स्थानों को वापसी सुरक्षित, स्वैच्छिक, सम्मानजनक और टिकाऊ होनी चाहिए। शरणार्थी एजेंसी का अनुमान है कि बांग्लादेश में करीब 9,00,000 रोहिंग्या लोग पनाह लिए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें उनके मूल स्थान म्यांमार से सितंबर 2017 में भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा की तलाश में भागना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुखिया फिलिपो ग्रांडे ने रविवार को कहा कि रोहिंग्या लोगों की म्यांमार वापसी के लिए हालात अनुकूल नहीं हैं। इसके अलावा ये फैसला करने का मौका व अधिकार भी शरणार्थियों को ही दिया जाना चाहिए कि वो वापस लौटना चाहते हैं या नहीं। खबरों में कहा गया है कि इन 4,350 रोहिंग्या शरणार्थियों को भी उनकी वापसी की योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये सूची किस आधार पर तैयार की गई है। आप सुन रहे थे संयुक्त राष्ट्र समाचार। मैं हूँ विभूति शर्मा, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।